महाबंद पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबले प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंधरिकार चल रहा है और पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 35 पर हम गए, 35। यह हमारे बंध सन्निकर्ष के प्ररूपणा में उत्तर प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग बंध का सन्निकर्ष अभी हमने प्रारंभ किया है देखने को, और ओघ में हम देख रहे थे चारों गतियों का और सभी जातियों का सन्निकर्ष देख लिया हमने। उसके बाद शरीर अंगोपांग संस्थान की भी बात हो गई, अब यहाँ सहनन की बात करनी है। यहाँ पर्टिकुलर सहनन का जघन्य अनुभाग बंद की बात है। हमने ये बात देखी थी कि 6 संस्थान और 6 सहननों का जघन्य जो अनुभाग बंद है वो मध्यम परिणाम में होता है, तो उसकी बात अभी हम देखते हैं यहाँ पर। तो असंप्राप्त सुपाटिका सहनन के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव अभी सहनन के साथ द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय कोई भी जाति बन सकती है, परंतु जघन्य के साथ क्या कैसे बंधेगी उसकी बात यहाँ पर है। 35 नंबर का पृष्ठ है, वे पढ़ते हैं। देखो, असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव तीर्यंच गति, पंचेन्द्रिय जाति, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, उद्योत और पर्याप्त का कदाचित बंध करता है। ये सब कदाचित है ना, इसके अन्य भी प्रकृतियां बंधेगी। तीर्यंच गति का कदाचित है तो मनुष्य गति भी बंधेगी, पंचेन्द्रिय जाति का कदाचित है तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय भी बंधेगी, परघात उच्छ्वास कदाचित है ना, पर्याप्त के साथ भी बन सकती है, अपर्याप्त के साथ भी बन सकते हैं। उद्योत का कदाचित होता है, कदाचित नहीं भी होता है, और पर्याप्त को भी कदाचित लिए। परंतु तीर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी का जघन्य सातवें नरक में सम्यक्त के सन्मुख होता है, और वहां तो ये बंधेगी नहीं, यहाँ जो बनती है तब वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। बाकी पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, पर्याप्त, एक ऐसी प्रकृतियां प्रशस्त है, वो अति संकलेश में जघन्य बंधेगी। और यहाँ परिणाम कैसे मध्यम है, क्योंकि असंप्राप्त सुपाटी का जघन्य हो रहा है, उसका अर्थ वो भी कैसे बंधेगी, तो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। ये क्यों अनंत गुणा अधिक, वो हमको समझना है। ये उद्योत का भी जघन्य कहाँ होता है, कौन करता है उद्योत का जघन्य? नहीं, वो उत्कृष्ट करता है जघन्य, तो कोई भी देव नारकी करेंगे अति संकलेश वाले। नहीं, चारों गति के संकलेश नहीं लेना, उद्योत में देवनार के संकलेश लेना है। देखो देखो, जरा देख लेते हैं चौथी पुस्तक में। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और उद्योत के जघन्य अनुभाग का स्वामी कौन है? वो सब पर्याप्त, उनसे पर्याप्त, साकार, जागृत, उत्कृष्ट, संकलेश युक्त, अन्यतर मिथ्या दृष्टि, देव और नारकी। क्योंकि मनुष्य तीर्यंच सर्वसंक्लेश में तो नरक गति बांधेंगे, वो उद्योत का बंध नहीं करेंगे। आपने वो सब चारों गति के जो लिखा है, हाँ सहनन के, क्योंकि वो तो मध्यम परिणाम में बनती है ना, वहां चारों गति के बराबर है। और उद्योत के लिए सर्वसंक्लिष्ट देव और नारके हो गए, और यहां कैसे मध्यम परिणाम, इसलिए वो अनंत गुणा अधिक बन देगी। सहनन का जघन्य मध्यम परिणाम चारों गति के जो, इतनी क्या एक इंद्रिय भी उसको जब मध्यम बांध देंगे, इन्हें जघन्य बांध देंगे, बांध सकते हैं, आगे बढ़ेंगे ना अभी। अब तीरंज गति भी ऑप्शनल है, कदाचित है, मनुष्य गति भी बन देगी यहाँ पर, तो मनुष्य गति वो भी मध्यम परिणाम में बनती है। तीरंज गति का जघन्य हमने सातवें नरक में देखा था, इसलिए वो अनंत गुणा कहा था। मनुष्य गति तीन जाति यानी द्विंद्रिय जाति, तीनद्रिय जाति, चतुरेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, ये इस सहनन के साथ छह संस्थान का ऑप्शन है। ये सभी प्रकृतियां मध्यम परिणाम में बनती हैं जघन्य, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दो विहाय गति, अपर्याप्त। हमने देखे ना द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ असंप्राप्त सुपाटी का जघन्य हो सकता है। और स्थिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। ये सभी प्रकृतियां मध्यम परिणाम में जघन्य है, इसलिए उनका भी जघन्य हो सकता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। जघन्य के साथ अजघन्य की कंपेयर है तो हमको वृद्धि रूप कहना है, जो उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट की कंपेरिजन हानि रूप कहते थे, और ये छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। औदारिक शरीर अभी असंप्राप्त सुपाटी का सहनन बन रहा है, वो मनुष्य तीरंज गति के साथ है तो औदारिक शरीर तो नियम से बंधेगा ही। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक अंगोपांग, क्योंकि द्विंद्रियादि के साथ सहनन है इसलिए अंगोपांग भी बंधेगा। प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु उपघात, त्रस बादर प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि ये सभी एक अप्रशस्त वर्ण और उपघात को छोड़कर बाकी सभी प्रशस्त है, वो सर्वसंक्लेश में जघन्य है, और अप्रशस्त वर्ण और उपघात है वो क्षपक के जघन्य है। यहाँ पर मध्यम परिणाम में प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकृतियां कैसी अनंत गुणा अधिक होती है। अब अप्रशस्त वर्ण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, इसका स्वामी कौन है? अप्रशस्त वर्णादि का जघन्य अनुभाग का याद है? अप्रशस्त वर्ण का जघन्य अनुभाग का स्वामी कौन है? हाँ, क्षपक, वो ध्रुवबंदी है ना, तो वहां कौन सी बंधेगी नियम से? वो देवगति वगैरह बाकी सब बंधेगी। वो कैसे बंधेगी? वो तो उत्कृष्ट बन रही है, अजगन्य अनंत गुणा कहेंगे। अभी पढ़ते यहां से देखो, अप्रशस्त वर्ण के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव लिखा है आपने? मैंने नहीं लिखा है, मगर यहाँ पूर्वकरण क्षपक है ना, तो वहां तो ये तो नाम कर्म के बंधने वाली मालूम है, देवगति वाला तो पैकेज बंधेगा वहां पर। तो वहां देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुर संस्थान, वैक्रिय अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु त्रिक, उपघात को छोड़ा इसमें से, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष, स्थिरादि छह और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृति है, यहाँ उत्कृष्ट बंधेगी तो अपने जघन्य से ये अनंत गुणा अधिक होता है। आहारक द्विक और तीर्थंकर का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। आहारद्विक का भी जघन्य हमने देखा था, छठे के सन्मुख था, और तीर्थंकर का जघन्य तो मिथ्यात्व के सन्मुख देखा था, उसकी अपेक्षा यहाँ पर वो अनंत गुणा अधिक हो रहा है। अप्रशस्त गंध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त स्पर्श चाहिए, यहाँ वर्ण लिखा है, पस वर्ण, वर्ण के बदले स्पर्श, क्योंकि वर्ण के साथ सन्निकर्ष ले रहे हैं इसलिए यहाँ स्पर्श होना चाहिए। और उपघात का नियम से बंद करता है जो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। भले एक शपक है पर आठवें गुण स्थान में यहाँ तो परिणामों का वेरिएशन हो सकता है, इसलिए अजघन्य भी हो सकता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार जैसे अप्रशस्त वर्ण के साथ लगाया ऐसा ही अप्रशस्त गंध रस व स्पर्श और उपघात की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। गतियों की मुख्यता से जिस प्रकार सन्निकर्ष कहे आए हैं उसी प्रकार अनुपूर्वियों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। केवल तिर्यंज गति का और अनुपूर्वी का जघन्य सातवें नरक में है और बाकी मध्यम परिणाम में है, वो तो हमने देख लिया था। अब आतप के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, आतप का जघन्य अनुभाग सर्व संकलेश वाला सौधर्म तक का देह होगा, वह जीव अब नियम से कौन सी बंधेगी उसमें? देखो तिर्यंच गति, एक केंद्रीय जाति, कुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो अब आतप का जघन्य, अभी तिर्यंच गति का जघन्य तो नारकिक है या ओह की अपेक्षा लेना है ना हमको, तो यहाँ वो तिर्यंच गति अनंत गुणा अधिक बंधेगी। एक इंद्रिय जाति का जघन्य कहाँ होगा? आतप के साथ, वो सर्व संकलेश में बंध रही ना, एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट होगा वहां पर जहां आतप का जघन्य है। आतप प्रशस्त है, उसका जघन्य कहाँ है? सर्व संकलेश में। और एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट कहाँ है? सर्व संकलेश में। इसलिए एक इंद्रिय जाति का भी यहाँ अजघन्य अनंत गुणा अधिक बंद हो रहा है। एक इंद्रिय जाति का अपना जघन्य कहाँ होगा? मध्यम परिणाम में। ख्याल में नहीं? यहाँ एक इंद्रिय जाति का अनंत गुणा क्यों कहा? क्योंकि सर्व संकलेश में वो उत्कृष्ट बनती है, उत्कृष्ट है वो तो अजघन्य अनंत गुणा कहेंगे क्योंकि यह सर्व संकलेश वाला जीव है। तो एक इंद्रिय जाति, हुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण जैसे ये सब कैसे यहाँ तो उत्कृष्ट बंधेगी, उत्कृष्ट बंधेगी यानी अनंत गुणा अधिक बंधेगी जघन्य की अपेक्षा। ये सबके लिए लेना। ये अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात का जघन्य तो क्षपक के है, यहाँ पर वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अस्थिर आदि पांच ये भी मध्यम परिणाम में जघन्य होते हैं और यहाँ तो सर्व संकलेश वाला है इसलिए यहाँ ये सभी प्रकृतियां अनंत गुणा अधिक होती है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, अब ये कौन सा जीव है? संकलेश वाला। तो ये प्रकृतियां वो भी जघन्य बन सकती है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे प्रशस्त है ना, आतप भी प्रशस्त है, ये भी प्रशस्त है। तो औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। उद्योत का भंग औदारिक शरीर के समान है, जो अभी हमने देखा ना सर्व संकलिश देव नारकी जो है वो उद्योत का जघन्य करेंगे। उद्योत के जघन्य के लिए सातवें नरक को नहीं लेना है, उद्योत के उत्कृष्ट के लिए हमने सातवें नरक को लिया था, सम्यक के सन्मुख वाले को। यहाँ जघन्य की बात हो रही है, सर्व संकलिष्ट देव और नार के। देखो अभी हमने औदारिक शरीर का पढ़ा था ना, पेज नंबर 32 पर। वो पहला पैराग्राफ 67 नंबर का पैराग्राफ। तो वो जघन्य औदारिक शरीर का जघन्य हो रहा है, यानी वो तो नीचे के देव एक इंद्रिय के साथ भी करेंगे, ऊपर के देव पंच इंद्रिय के साथ और नारकी भी करेंगे औदारिक शरीर। तो वहां तीरंज गति हुंड संस्थान अप्रशस्त होने चाहिए। ये जो अप्रशस्त प्रकृतियां है वो अनंत गुणा अधिक बन देगी, और जो एक इंद्रिय जाति वगैरह वगैरह जो है असंप्राप्त रूप वो कदाचित बन देगी, वो भी अनंत गुणा अधिक है। और पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग ये जो कदाचित बंधेगी वो जघन्य भी और अजघन्य भी होगी। ख्याल में नहीं, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृति है, उसके साथ प्रशस्त है वो जघन्य भी अजघन्य भी होगी। ऐसा ही उद्योत का भंग हमने देखा 36 पेज पर। देखो अप्रशस्त विहाय गति के ये भी मध्यम परिणाम में जघन्य होती है। जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव नरक गति मनुष्य गति तीन जाति में द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति 6 संस्थान 6 सहनन 2 अनुपूर्वी और सिरादि 6 युगल ये सब का मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। ये सभी प्रकृतियों का जघन्य कहाँ है? मध्यम परिणाम में। और अप्रशस्त विहाय गति का भी मध्यम परिणाम में। और ये कैसे लिए सब? कदाचित वाली, क्योंकि अप्रशस्त विहाय गति है तो किसी भी गति के साथ, यानी देव छोड़कर देव गति छोड़कर तीनों गति के साथ बन सकती है, इसलिए उसको कदाचित में रखा। परंतु वो ऐसी कदाचित लेगी जो मध्यम परिणाम में जघन्य होती है, इसलिए यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह 6 स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, यानी इनका जघन्य हो सकता है, ये हमने देखा। अब नरक गति के साथ भी अप्रशस्त विहाय गति बन सकती है, मनुष्य गति के भी और तीर्यंच गति के साथ भी बंधेगी, परंतु यह मध्यम परिणाम है। और तीर्यंच गति का अपना जघन्य तो सातवें नरक में सम्यक्त्व के सन्मुख होगा, उसकी अपेक्षा यहाँ पर तीर्यंच गति बंधेगी तो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। उद्योत को देखो, तीर्यंच गति अप्रशस्त है वो जघन्य बन रही है, उद्योत प्रशस्त हो रही है, उसका उत्कृष्ट वहां पर है सातवें नरक के नारकी में। देखो अन्य जो जीव है सम्यक्त्व के सन्मुख अवस्था, अन्य नारकी की बात करेंगे तो वहां वो तीर्यंच गति बांधेंगे कि नहीं? ना, वो तो प्राग्य लब्धि में 23वें स्थान पर ही तीर्यंच गति गत्यानुपूर्वी उद्योत वो सब उसका बंधापसरण होता है। सातवें नरक का नारकी करण लब्धि के अंतिम समय तक तीर्यंच गति बांधता है, उद्योत बन सकती है उसके, तो वो सर्व विशुद्ध है तो वहां उद्योत का उत्कृष्ट होगा और तीर्यंच गति का जघन्य होगा। ख्याल में आई ना बात? तो यहां हम क्या किसके साथ देख रहे? अप्रशस्त विहाय गति के साथ। देखो पांचवी लाइन, तीर्यंच गति पंचेंद्रिय जाति। देखो विहाय गति है ना, तो द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय कोई भी जाति बन सकती है। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय बंधेगी तो वो भी मध्यम में जघन्य होती है, ये भी मध्यम में जघन्य है, इसलिए उसका जघन्य अजघन्य दोनों विकल्प आए। परंतु तीर्यंच गति यदि बनती है तो सातवें नरक की अपेक्षा यहाँ अनंत गुणा अधिक बंधेगी। अप्रशस्त विहाय गति मध्यम परिणाम में बनती है, पंचेंद्रिय जाति अगर उसकी बंधेगी तो पंचेंद्रिय जाति का सर्व जघन्य कहाँ होता है? सर्व संक्लेश में। और यहाँ मध्यम परिणाम में वो कैसे बंधेगी? अनंत गुणा अधिक बंधेगी। देखो ये लिस्ट फिर पढ़ते, तीर्यंच गति पंचेंद्रिय जाति 2 शरीर, क्योंकि नर गति भी ऊपर दी थी हमने, मनुष्य तीर्यंच गति भी है, यानी वैकृत शरीर भी लेना है और औदारिक शरीर भी लेना है जो सर्व संकलेश में जघन्य होती है। हाँ, 2 अंगोपांग भी तीर्यंच गत्यानुपूर्वी तो सातवें नरक में होते, उद्योत भी सर्व संकलेश देवनारकी को जघन्य होती है, इनका कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। अनंत गुणा अधिक क्यों? क्योंकि यहाँ मध्यम परिणाम के साथ बंद रहे वो। तेजस शरीर वो ऊपर वाली तो कदाचित वाली थी, अब ये कैसी है? नियम से तेजस शरीर, कार्मन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण को भी लिया जो क्षपक में जघन्य होती है, अगुर लघु चतुष्क में उपघात भी क्षपक के होती है और बाकी तीन तो सर्वसंक्लेश वाले को जघन्य होती है। त्रस्त चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। इसी प्रकार दुस्वर की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी दुस्वर का जघन्य करने वाला जीव, जघन्य की बात है, मध्यम परिणाम में जघन्य होगा तो उसके साथ भी तीनों गति बन सकती है, तो नरक गति, मनुष्य गति तो जघन्य भी बन सकती है, अजघन्य भी। वो जैसा ही जो कथन है ऐसा सारा कथन दुस्वर के लिए लागू हो जाता है। अब सूक्ष्म प्रकृति के, ये ओ की बात चल रही है अभी भी, सूक्ष्म प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। देखो सूक्ष्म का उत्कृष्ट तो हमने देखा है ना, मनुष्य तीर्यंच करते हैं और एक इंद्रिय जाति वो तो सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंद करते, पर सूक्ष्म का हमको जघन्य लेना है तो ये फिर मध्यम परिणाम में लेना पड़ेगा। देखो सूक्ष्म प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला ये, अभी सूक्ष्म प्रकृति एक केंद्र के साथ ही बनती है क्योंकि अन्य में कोई सूक्ष्म वाला विकल्प ही नहीं है। हाँ, तो उसमें तो तीर्यंच गति ही नियम से बंधेगी, तो वह जीव तीर्यंच गति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुर लघु, उपघात और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो ये नियम से बंधने वाली है। देखो तीर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी नारकी को जघन्य है और यहां वो कैसी होगी? अनंत गुणाधिक होगी। औदारिक, तेजस, कारमान, प्रशस्त वर्ण चतुष्ट, ये जो प्रशस्त प्रकृतियां है वो सर्व संक्लेश में जघन्य, यहां वो अनंत गुणाधिक होगी। अब अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात है वो क्षपक के जघन्य, यहां वो अनंत गुणाधिक है। ये नियम से बनने वाली अनंत गुणा अधिक बता दिए। अब एकेंद्रीय जाति, कुंड संस्थान, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति का नियम से बंद करता है क्योंकि सूक्ष्म के साथ इसके, हाँ सूक्ष्म के साथ इसके जो अपोजिट है सुभग, आदेय वगैरह वो बनती नहीं है, तो ये नियम से ही बंदेगी। किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है क्योंकि मध्यम परिणाम है ना, तो इनका भी मध्यम में जघन्य होता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। परघात उच्छ्वास, पर्याप्त और प्रत्येक का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो सूक्ष्म जो है ना, सूक्ष्म जो है वो एक इंद्रिय नहीं, पांचों स्थावर का एक हो सकता है सूक्ष्म, तो उसमें प्रत्येक भी हो गए, पृथ्वी अग्नि वायु वगैरह वो प्रत्येक जीव है, तो प्रत्येक नाम कर्म भी बंधेगा सूक्ष्म के साथ और साधारण भी बंधेगा जो सूक्ष्म निगोद में जाने वाला है या सूक्ष्म निगोद संबंधी बंद कर रहा है, इसे उनको ऑप्शनल में रखा। देखो क्या कहते हैं, परघात उच्छ्वास, क्योंकि सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त भी बन सकता है, पर्याप्त भी बन सकता है, इसलिए परघात उच्छ्वास को कदाचित में रखा, पर्याप्त को भी कदाचित में रखा और प्रत्येक को भी कदाचित में रखा। परंतु ये कदाचित वाली कैसी है? तो प्रशस्त है, इसलिए वो कैसे बंधेगी? अनंत गुणा अधिक बंधेगी क्योंकि वो प्रशस्त है, तो संक्लेश में जघन्य बंधेगी, यहां वो अनंत गुणा अधिक बंधेगी। और अपर्याप्त, साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। ये समझ में आती बात? ये सब मध्यम परिणाम में जघन्य होती है और यहाँ बंद करता है, कदाचित में रखा उसको, क्योंकि स्थिर अपर्याप्त तो ऊपर देखा था, साधारण प्रत्येक भी एक भी विकल्प देखा था, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ भी यहाँ देख लिया, ऊपर तो बाकी तो ले लिए थे, दुर्भग अनादेय ऐश कीर्ति तो ऊपर ले लिए थे, और एक इंद्रिय जीव है तो स्वर बांधने का सवाल ही नहीं है, इसलिए पांच जोड़ी हो गई। तो यदि बंद करता है, ये कदाचित वाली है, तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार साधारण प्रकृति की मुख्यता से जानना चाहिए, सूक्ष्म के साथ केवल साधारण का सन्निकर्ष समान होगा, अपर्याप्त को अलग से बताएंगे, क्योंकि सूक्ष्म प्रकृति मात्र एकेंद्रीय जाति के साथ होगी, ऐसे साधारण भी एकेंद्रीय के साथ है, पर अपर्याप्त प्रकृति तो पांचों जाति के साथ बन सकती है, इसलिए इसके समान अपर्याप्त को नहीं लेना, ख्याल में है ना, उसकी बात अलग से बताएंगे। अब अपर्याप्त प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब मनुष्य भी अपर्याप्त होते, तीरंज भी अपर्याप्त होते, वहां तो केवल तीरंज गति ली थी, यहाँ तो गति अभी दो ऑप्शनल में ले लेंगे। तो अपर्याप्त प्रकृति के जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव तीरंज गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारी कंगोपांग, तीरंज गत्यानुपूर्वी त्रस्त बादर और प्रत्येक का कदाचित बंद करता है। देखो कदाचित क्यों लिखा, तीरंज गति के बदले मनुष्य गति भी बन सकती है, पंचेंद्रिय जाति के बदले अन्य सभी चारों जातियां बन सकती है, औदारी कंगोपांग जो है तो द्विंद्रिय के साथ बंधेगा, एक इंद्रिय अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगा, अनुपूरी वैसे लेना है। ये अपर्याप्त नाम कर्म स्थावर सूक्ष्म और साधारण के साथ भी बनता है, इसलिए ये सब कदाचित में लिए प्रकृतियां, और वो कैसे तो अनंत गुना अधिक बनती है, क्योंकि इसमें से तीरंज गति और गत्यानुपूर्वी तो सातवें नरक को जघन्य है, यहाँ वो अनंत गुना है, और बाकी पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग वगैरह सर्व संकलेश में जघन्य है, यहाँ वो अनंत गुना है, क्योंकि यहाँ मध्यम परिणाम में जघन्य हो रहा है। अब जो ऑप्शनल ली तो अन्य भी लेना है हमको, मनुष्य गति चार जाति असंप्राप्त सुपाटी का सहनन, ये भी ऑप्शनल इसलिए कि एक इंद्रिय के साथ बनता नहीं है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी स्थावर सूक्ष्म और साधारण का कदाचित बंद करता है, और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ये सब मध्यम परिणाम में जघन्य होते हैं। और वो सूक्ष्म अपर्याप्त का भी मध्यम परिणाम में होते हैं, इसलिए इनका जघन्य भी और अजघन्य भी होता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब औदारिक शरीर, देखो अंगोपांग तो कदाचित में लिया, पर औदारिक शरीर तो बंधेगा नियम से, तो औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मन शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघु उपघात और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। इसमें से अप्रशस्त वर्ण और वर्ण चतुष्क और उपघात को क्षपक में जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक, बाकी सब प्रशस्त प्रकृतियां है वो सर्व संकलेश में जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक मध्यम परिणाम में। हुंड संस्थान और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद न, वो तो उत्कृष्ट बन देगी, प्रशस्त प्रकृति बनती है पर वो उत्कृष्ट बन देगी, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात दो सर्व संकलेश वाला, ये सब लेना ना, औदारिक शरीर तेजस शरीर कारवां शरीर, ये सर्व संकलेश वाले को जघन्य होगी, ये सारे प्रशस्त प्रकृतियां हैं नियम से बंधने वाली। अब हुंड संस्थान और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंध करता है, क्योंकि अपर्याप्त के साथ तो स्वर बंधेगा ही नहीं। हाँ, किंतु वो भी मध्यम परिणामी जगन्य है, इसलिए वो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अपर्याप्त के समान अन्य कोई नहीं ली, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन वगैरह है ना, अन्य ऑप्शन है। अभी स्थिर प्रकृति के हमने देखा, वो छह जो युगल है उसका जघन्य जो होता है मध्यम परिणाम में ही होता है, और वो स्थिर अस्थिर तो चारों गति के साथ बन सकती है। तो स्थिर नहीं, नर गति के छोड़कर स्थिर प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंच गति। अब ये मध्यम परिणाम में जघन्य है तो तिर्यंच गति कैसे बंधेगी? अनंत गुणाधिक, यहाँ वो अनंत गुणाधिक। हाँ, सातवां नरक वाला जघन्य करता है। पंचेंद्रिय जाति, दो शरीर दो अंगोपांग, ये सब सर्व संकलेश में जघन्य, यहाँ पर वो अनंत गुणाधिक। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी गति के समान है। आतप उद्योग भी सर्व संकलिष्ट देवनारकी को, आतप देव को और बाकी देवनारकी को जघन्य बनती है, यहाँ मध्यम परिणाम में वो अनंत गुणाधिक बंधेगी। त्रस चतुष्क नहीं लेना, त्रस लेना, क्योंकि स्थावर के साथ भी तो स्थिर बन सकती है ना, इसलिए त्रस अकेला लेना। हाँ, और तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये समझ में आए ना ये सबके कारण। अब मनुष्य गति, देव गति, उनके साथ भी स्थिर तो बन सकती है ना, स्थिर के जघन्य के साथ भी बन सकते, उनका भी मध्यम परिणाम में और स्थिर का भी मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, इसे वो ऑप्शनल वाले बताएंगे अभी। मनुष्य गति, देव गति, चार जाति, छह संस्थान, छह सहनन, दो अनुपूर्वी, दो विहाय गति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और शुभादि पांच युगलों का कदाचित बंद करता है। पांच क्यों दिए लक्ष्मी? नहीं, स्थिर के साथ अन्य पांच रहेंगे ना। सील ऑलरेडी लिया है ना, इसलिए। युगल लिए ना सारे। हाँ, स्थिर लिया तो अस्थिर नहीं बन रहा है उसी समय, परंतु बाकी पांच में से कोई ना कोई बन रही है और वो भी मध्यम परिणाम में जघन्य होते हैं सारे ही, इसलिए कदाचित बंद करता है। और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क। अब यहाँ अगुरु चतुष्क डालना था, हमने डाला था ऊपर भी और यहाँ पर भी। ऊपर भी नीचे से चौथी लाइन है, पसत था, पसत था चार। हाँ, उसके बाद अगुरु चार ले, अगु चार, अगु चार। प्राकृत दूसरी लाइन। हाँ, तस चार में वो चार निकाल ले, चार निकाल ले। क्योंकि वो कदाचित में रखना था ना, त्रस चार में अगर त्रस ही कदाचित होता है क्योंकि स्थावर भी बनती है, परंतु स्थिर के साथ अपर्याप्त नहीं बंधेगा, इसलिए पर्याप्त को नियम से ले लिया। क्या क्या सर्व संकलेश में जगन्य है, यहाँ अनंत गुणा होगा। नहीं नहीं, वहां चतुष्को क्यों नहीं लेना त्रस चतुष्को, क्योंकि देखो ऊपर त्रस लिया कदाचित में, बाद में यहाँ पर्याप्त लिया नियम से में, बादर और प्रत्येक का कदाचित में लिया, इसलिए इनका कथन अलग से किया है, इसलिए वहां केवल त्रस चाहिए था। फिर पढ़ती हूँ मैं ये तेजस शरीर से, फिर दोबारा पढ़ती हूँ। तेजस शरीर स्थिर के साथ हो रहे ना, तेजस शरीर कार्बन शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघु चतुष्क, यानी अगुरु लघु पर्याप्त नियम से बनता है तो परघात उच्छ्वास भी नियम से बंधेगा, अगुरु लघु और उपघात तो ध्रुव बंदी है ऐसे भी, इसलिए अगुरु चतुष्क होना चाहिए। पर्याप्त और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण अधिक होता है, क्योंकि इसमें से प्रशस्त प्रकृतियां तो सर्वसंकलेश में जघन्य बनती है, उपघात और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तो शपक के जघन्य बनती है, और यहाँ मध्यम परिणाम में वो सभी अनंत गुण अधिक बनती है। बादर और प्रत्येक का कदाचित बंद करता है, क्योंकि स्थिर प्रकृति सूक्ष्म के साथ भी तो बन सकती है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था ना सावर के साथ सूक्ष्म साधारण को भी हमने कदाचित में रखा था, केवल अपर्याप्त नाम कर्म नहीं बन, अपर्याप्त के साथ अस्थिर अशुभ ये सब बंधेगी। ये कदाचित में है ना, और वो अनंत गुणा है। एक्चुअली वो त्रस के साथ उनका भी अनंत गुणा अधिक बताया था, कदाचित और अनंत गुणा अधिक, वहां रखने के को न रखने का क्या कारण है पता नहीं है। जैसे हमने देखो फिर से, ये भी प्रशस्त प्रकृति है, त्रस भी है, वो भी कदाचित है, ये भी कदाचित है, यानी वहां त्रस बादर और प्रत्येक चाहिए था, क्योंकि बाद में जो कदाचित वाले जो अन्य जो लिखे थे ना उसमें स्थावर सूक्ष्म और साधारण लिया था, तो वहां पर भी त्रस बादर और प्रत्येक लेना ले सकते थे। ख्याल में आई बात, हाँ इसे उन्होंने लिया, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वहां पर भी लिखने में कोई वैसा ही, ये भी ये बादर और ये भी प्रकृति ऐसी ही है, ये त्रस चतुष्क के बदले त्रिक लिख कर इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसी प्रकार शुभ और यश कीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि यश कीर्ति के भंग में स्थावर नहीं होना चाहिए था, सूक्ष्म और साधारण को छोड़ देना, क्योंकि एकेंद्रीय पर्याप्त उनके तो यश कीर्ति का भी बंद होता है, इति यश कीर्ति के साथ सूक्ष्म और साधारण नहीं बंधेगी और अपर्याप्त भी नहीं बंधेगी। जैसे स्थिर के साथ हमके अपर्याप्त को नहीं लिया था और यश कीर्ति के साथ सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त तीनों को नहीं लेना है, सिर के समान बताए ना, और सिर के समान शुभ का भी ऐसा ही होगा, उन्होंने बताते समय यश कीर्ति को भी ऐसा ही होगा, परंतु यश कीर्ति के साथ ना सूक्ष्म बनता है ना साधारण बनता है ना अपर्याप्त बनता है। अपर्याप्त हमने सिर के साथ ही छोड़ा था, इसलिए सिर के समान है, स्थिर के समान होते हुए और क्या विशेषता है उसकी बात है, यानी उसका कारण क्या है। हाँ वो तो सूक्ष्म और साधारण के साथ वो नियम से यश कीर्ति बनती है, या यश कीर्ति जो हम कहेंगे यश कीर्ति के साथ स्थावर रखना है, यानी यहाँ जो स्थावर लिखा है वो निकाल देना है, यानी स्थावर के साथ यश कीर्ति बन सकती है, यानी यश कीर्ति के ना सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त नहीं बनती। देखो देखो, स्थिर के समान बताया, स्थिर में ऑलरेडी अपर्याप्त छोड़ा था, तो यश में और क्या बनना छोड़ना है? स्थिर के साथ जो विशेषता है उसकी यहाँ बात की, जो स्थिर के समान है वो फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी, पर यह हमने अपने क्लैरिटी के लिए बताया, जहाँ यश कीर्ति बनती है वहाँ सूक्ष्म साधन अपर्याप्त तीनों ही नहीं बनते। यानी यश और अयश का विकल्प कहाँ है? एक केंद्रीय पर्याप्त के साथ है, और वो भी प्रत्येक के साथ, बादर के साथ। एक केंद्रीय के साथ यश बनती से, वो बादर पर्याप्त प्रत्येक के साथ बनेगी। सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ यश कीर्ति का बंधन नहीं होगा, बस इतनी क्लैरिटी रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अस्थिर प्रकृति के, ये भी मध्यम परिणाम में जगन है ना, इस सावर बनती, इसलिए वहां से हमने निकाल दिया था। सावर के साथ भी, त्रस के साथ भी, किसके साथ नहीं बनता है उसको लिखना है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ नहीं बनता। अभी अस्थिर का भी जगन्य कहा है, तो मध्यम परिणाम में, तो अस्थिर प्रकृति के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अब स्थिर का बंध जो होता था, तो स्थिर के बंध के साथ कितनी गतियां ली थी? नरगति के साथ स्थिर बनता ही नहीं है। हाँ, अब अस्थिर के साथ क्या लेना है? हाँ, चारों जगति बंधेगी, अस्थिर के जगन्य के साथ चारों गति बंधेगी। स्थिर के जगन्य के साथ नरगति नहीं बन रही थी, क्योंकि नरगति के साथ वो सभी छह अप्रशस्त बनती है। देखो, अब अस्थिर प्रकृति के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, नरगति, देवगति, मनुष्य गति, अब यह ऐसी लिस्ट ली है कि जो जगन्य भी बन सकती है, क्योंकि मध्यम परिणाम में जगन्य बनती है। तीन जगति बंधेगी, वो भी कदाचित में रखेंगे, पर वो तो अनंत गुणा अधिक बंधेगी, क्योंकि उसका अपना जगन्य कहाँ है? सातवें नरक में। तो नरक गति, देवगति, मनुष्य गति, चार जाति, किसको छोड़ा? पंचेंद्रिय जाति को छोड़ा, क्योंकि उसका जगन्य सर्वसंकलेश में होगा। ये ख्याल में रखना, यहाँ मध्यम परिणाम में बनने वाली सब ले ले कदाचित में, तो चार जाति, छह संस्थान, छह सहनन, तीन अनुपूर्वी जो गतियां ली ना उसके अनुपूर्वी, दो विहाय गति, स्थावर आदि चार। अस्थिर के साथ तो बन सकते हैं ना वो भी, स्थावर आदि चार में स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, और शुभादि पांच युगल का कदाचित बंध करता है। अस्थिर के साथ लगा रहे हैं, इसलिए अस्थिर छोड़कर अन्य सब लिया और युगल लिए दोनों ही। मैंने अस्थिर है तो स्थिर का सवाल ही नहीं है, बाकी शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, वो सब ही ले लेना। कदाचित बंध करता है, यदि बंध करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। यहां तक समझ में आई बात? मध्यम के साथ मध्यम परिणाम में जगन्य बनने वाली, जगन्य भी अजगन्य भी। अब तीर्यंच गति भी तो बन सकती है, तो तीर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, ये तीर्यंच गति है वो तो सातवें नरक में जगन्य, यहाँ वो अनंत गुणा। पंचेंद्रिय जाति वगैरह प्रशस्त है वो तो सर्व संकलेश में जगन्य। तो पंचेंद्रिय जाति, दो शरीर, दो अंगोपांग, तीर्यंज गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योग, ये प्रशस्त है, वो सर्व संकलेश में जगन्य है, मध्यम परिणाम ही अनंत गुना बंधेगी। परघात उच्छ्वास अतप उद्योत्रस चतुष्क, और तीर्थंकर का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुना अधिक होता है। तेजस शरीर कार्मन शरीर, वो ऊपर वाली छह उसमें कुछ प्रशस्त भी थी, वो कदाचित में थी। अब यहाँ कहते तेजस शरीर कार्मन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण का, ये तो ध्रुव बंदी है ना, तो नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। वो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात को तो श्रेणी में है जगन्य क्षपक के, यहाँ वो अनंत गुणा होगा, और बाकी जो प्रशस्त है वो सर्व संकलेश वाले के जगन्य होते हैं, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक हो गए। इसी प्रकार यानी जैसे अस्थिर का कथन आया है, ऐसा ही अशुभ और अयश कीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। वो यश कीर्ति में डिफरेंस था, अयश में तो कोई बात ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव देवगति, देखो अभी मिथ्यात्व के सन्मुख होकर मिथ्या नरक में जाने वाला जीव है ये, पर सम्यक्त्व में है ना, तब तक तो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, तब तक वो देवगति का ही बंद कर रहा है नियम से। पंचेंद्रिय जाति, वैकृत शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुर संस्थान, वैकृत अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु चतुष्क, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, अस्थिर अशुभ, सुभग सुस्वर आदे, क्योंकि समय दृष्टि इसलिए सुभग सुस्वर आदे लिया, और अन्य में अयश कीर्ति, यानी बाकी जो है ना अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति वो अप्रशस्त वाली ली, और निर्माण का नियम से बंद होता है जो अनंत गुना अधिक बांधता है। ये मिथ्या तो किस सन्मुख वाला है, चौथे गुण स्थान वाला है ना, तो यहाँ पंचेंद्रिय जाति वगैरह कैसी बंधेगी, अनंत गुणा, क्योंकि भले वो सर्व संकलेश है पर मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला जगह ने बांधेगा। ये कौन सा जीव है, समय दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला है, तो यहाँ पंचेंद्रिय जाति भी अनंत गुणा अधिक बंधेगी, और बाकी जो अस्थिर अशुभ वगैरह जो मध्यम परिणाम में जघन्य बनती है, और यहाँ चौथे के योग्य संकलेश ज्यादा है, तो यहाँ वो भी अनंत गुणा अधिक बनेगी। क्योंकि जब हम मध्यम परिणाम में जघन्य बनती कहते हैं, वो समय दृष्टि के भी मध्यम परिणाम में जघन्य बन सकते हैं, पर यहाँ समय दृष्टि होते हुए भी सर्व संकलेश वाला जीव है, इसलिए यहाँ सभी प्रकृतियां अनंत गुणा अधिक बनती है। रीजनिंग ख्याल में आई बात इन सबकी। अब यहां तक तो हमने ओग में ये सारी बातें देखी थी, अब हमको ये जगन्य अनुभाग बंध का जो सन्निकर्ष है वो मार्गणाओं में हम देखेंगे। उसमें कहते हैं नारकियों में अभिनिबोधि ज्ञानावरण के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव चार ज्ञानावरण का नियम से बंध करता है। अब इसका जगन्य कौन बांधेगा, हाँ मयंक भाई, नारकियों में इसका जगन्य कौन बांधेगा, समय दृष्टि और सर्व विशुद्ध वाला, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृति ना, मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला इसको उत्कृष्ट बांधेगा, और समय दृष्टि सर्व विशुद्ध वाला इसको जघन्य बांधेगा। तो एक का जघन्य है तो अन्य का बंध तो नियम से है, परंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंध करता है। क्योंकि हमने देखा ना केवल नवे गुण स्थान जो क्षपक वाले है वहां बंधने वाले जो जघन्य है, वही एक का जघन्य होगा तो दूसरा जघन्य होगा, अन्य सब प्रकृतियों नीचे के गुण स्थानों में समय दृष्टि के भी परिणामों की वेरिएशन होगी, तो जघन्य के साथ जघन्य अजघन्य का विकल्प होगा। और यदि जघन्य अजघन्य अनुभाग का बंध करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी वो पांचों का आपस में ऐसा ही सन्निकर्ष होगा। इसी प्रकार पांच अंतराय का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि जैसे पांचों ज्ञानावरण बनती है चारों सभी गुण स्थानों में, पांच अंतराएं भी बनती है। परंतु यहाँ दर्शनावरण में क्या डिफरेंस होगा? निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि का जघन्य कहाँ होगा? सम्यक तो के सन्मुख। और बाकी का छह का जघन्य कहाँ होगा? सम्यक दृष्टि, नारकी है ना, सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध वाला। अब यहाँ हम देखते हैं तो निद्रा निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि का नियम से बंद करता है। स्त्याना वृद्धि व स्त्यान वृद्धि करना, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। ये सम्यक्त के सन्मुख वाला लिया ना, तीनों एक साथ बंद विच्छुति होती है, परंतु उसमें जघन्य अजघन्य का डिफरेंस हो सकता है। यदि वह अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब जहां निद्रा बंध रही है वहां नव का बंध है, निद्रा नहीं, निद्रा निद्रा, तो निद्रा निद्रा बन रही है जघन्य सम्यक्त के सन्मुख है, परंतु वो तो वहां नव का बंद हो रहा है, तो अन्य छह दर्शनावरण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है, क्योंकि इन छह का अपना जघन्य कहाँ है? सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि को, यहाँ वो अनंत गुणाधिक बनती है। इसी प्रकार निद्रा निद्रा के समान प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये अभी हमने देखा ना, छहों का जघन्य करने वाला सम्यक दृष्टि है सर्व विशुद्धि वाला, तो वहां तो अन्य पांच ही प्रकृतियां बंधेगी। छह का बंद है ना, उसमें से एक के जघन्य के साथ लगा रहे, तो निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, यानी यहाँ वो तीन जो है ना स्थान वृद्धि आदि तीन, वो बंधेगी नहीं यहाँ पर। हाँ, तो ये निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पांच दर्शनावरण का नियम से बंद करता है। पांच में एक प्रचला को लेना है और बाकी चार दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन सब का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी वो छह का आपस में ऐसा ही होगा, किंतु इनमें से किसी एक के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का नियम से बंद करता है, जो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब वेदिनी में तो एक ही बंधेगी, आयु भी एक ही बंधेगी और गोत्र भी एक ही बंधेगा, इसलिए उसका सन्निकर्ष ही नहीं होगा, तो ओग के समान बता दिया। अब बात रही मोहनीय की और नामकर्म की, क्योंकि ज्ञान और दर्शन और अंतराय बता चुके, वेदिनी आयु गोत्र तो इनका सन्निकर्ष नहीं होता है। अब मोहनी और नामकर्म दो रहेंगे, तो मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाले, ये जघन्य की बात हो रही, कहाँ होगा इसका जघन्य? हाँ, सम्यक्त्व के सम्मुख अंतिम समय में। तो मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव अनंतानुबंधी चार का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। बारह कषाय और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है, यानी यहाँ नियम से बंधने वाली पांच नौ कषाय पुरुष वेद बंध रहे हास्य रति और भय जुगुप्सा, क्योंकि भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है और यहाँ करण लब्धि के अंतिम समय में है, वहां अरति शोक के तो बंध विच्छित्ति चौतीसवें बंधापसरण में हो गई, बाद में भले समय दृष्टि के बंधेगी परंतु यहाँ वो नहीं बन रही है। तो बारह कषाय और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि इनका जघन्य समय दृष्टि सर्व विशुद्ध वाला करेगा, यहाँ पर वो अनंत गुणा अधिक हो रहा है। इसी प्रकार जैसे मिथ्यात्व का हमने सन्निकर्ष देखा, ऐसा ही अनंतानुबंधी चार की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। अब ये समय दृष्टि है जहां 12 का बंध है टोटल कषायों का, तो उसमें से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध अकेले को बाजू में लिया, उसका जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव 11 कषाय, 12 में से क्रोध को अप्रत्याख्यान क्रोध को लिया तो बाकी सभी 11 कषाय और 5 नौ कषाय समय दृष्टि है। वही पुरुष वेद हास्यरति भय जुगुप्सा लेना है, क्योंकि जघन्य बंध करने वाला जीव लिया है, इनका नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह 6 स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी ये जो 12 जो है उनका और ये 5 नौकषायों का आपस में सन्निकर्ष ऐसा ही होगा, किंतु इनमें से किसी एक के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का नियम से बंद करता है, जो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह 6 स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब किसको किसको छोड़ा हमने? स्त्री वेद को छोड़ा, नपुसक वेद को और अतिशोक को छोड़ा। अब स्त्री वेद और नपुसक वेद तो प्रायः लब्धि के जो विशुद्ध के स्थान है वहां उसका जघन्य होता है, तो स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पर है तो मिथ्या दृष्टि है ना। मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। हास्यरति और अतिशोक का कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि हास्यरति का जघन्य समय दृष्टि करेगा और अरतिशोक का जघन्य वो भी समय दृष्टि तत्प्रायोग में करेगा, क्योंकि करण लब्धि के 34वें स्थान पर बंधापसरण होता है, पर फिर भी सम्यक्त्व को उसका बंध होता है समय दृष्टि को, इसलिए वहां तत्प्रायोग को लेना, और दोनों ही यहाँ अनंत गुणा अधिक बंधेंगे। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, ये भी मिथ्या दृष्टि के प्रायोग लब्धि में हमने के देखा ना, स्त्री वेद को 30वें स्थान पर उसकी बंध विच्छित्ति होती है और इसका 27 के स्थान में होती है, तो उसका कथन स्त्री वेद के समान ही होता है। अरति के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अब ये समय दृष्टि उसका जघन्य करेगा, पर वो सर्व विशुद्धन लेते हुए तत्प्रायोग विशुद्ध लेना, तो सर्व विशुद्धक में जो जघन्य बनती है वो भी अनंत गुणा बंधेगी। तो अरति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब समय दृष्टि क्या क्या बांध रहा है यहाँ पर? 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा का। अरति बंध रही है तो वहां पर हास्य और रति नहीं बंधेगी, इसलिए इनका नियम से बंध होता है, जो अनंत गुणा अधिक होता है। परंतु अरति के साथ बंधने वाला शोक जो है तो शोक का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि दोनों का स्वामी वही है तत्प्रायोग वाला समय दृष्टि। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह 6 स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इस तरह से हमने ये मोहिनी की बात देखी, यहाँ पर नारकियों में मोहिनी में स्वस्थान सन्निकर्ष देख लिया। अब नारकियों में नाम कर्म को देखना है। नारकी इन जनरल है तो तीर्यंच गति और तीर्यंच गत्यानुपूर्वी का भंग ओह के समान है, यानी इसका जघन्य 7वें नरक में जो है सम्यक्त्व के सन्मुख वाली बात है, तो वहां तीर्यंच गति गति का जो उसका जघन्य हो रहा है, यानी तीर्यंच गति के जघन्य के साथ तीर्यंच गत्यानुपूर्वी का भी जघन्य होगा, उसके नीच गोत्र का भी जघन्य हो सकता है, जघन्य अजघन्य। बाकी यहाँ बंधने वाली अन्य प्रकृतियां लेना है नाम कर्म की, वो कैसी होगी? जघन्य देखो ये 7वें नरक में तीर्यंच गति बंध रही है तो मनुष्य गति बंधेगी नहीं, गति तो वो तो दूसरा सन्निकर्ष है, हम तिरंज गति के साथ लिख रहे हैं, ओ के समान बता दिया, पर हमको याद है कि नहीं ये देख रहे हैं। हाँ, तो गति बन रही है, तो जाति पंचेंद्रिय बन रही है, औदारिक शरीर अंगोपांग बन रहा है, ये प्रशस्त वगैरह सब बनती है, वो सर्व संकलेश में जगन है। यहाँ कैसी बंधेगी? अनंत गुणाधिक। हाँ, और यहाँ बंधने वाली अप्रशस्त कैसी बंधेगी? अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात वगैरह कैसी बंधेगी? ना, वो भी अनंत गुणा बंधेगी, क्योंकि समय दृष्टि को वो जगन्य बंधेगी। शपक यहाँ नहीं लेना, यहाँ नारकी में। हाँ, यहाँ सब में ओक के समान, कथन ओक के समान ही होगा। देखो निकालो, ओग में भले स्वामी अलग है परंतु कथन वैसा ही है। पेज नंबर 3 पर है देखो, अरे सॉरी, उत्कृष्ट है, जगन्य को लेना है। हाँ, जगन्य की बात 27 के बाद शुरू हुई। हाँ, 29 नर गति है, उसके बाद तिर्यंच गति है। 29 पेज पर था। हाँ, तो ये पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर वगैरह ये जो सभी बंधेगी, नियम से बंधेगी ना। यहाँ समचतुर संस्थान ही बंधेगा, क्यों? अभिकरण लब्धि में है वो, अन्य की सब बंधापसरण हुआ है, ये सहनन वगैरह सब वज्रषभ नारा सहनन ही बंध रहा है। तो ये सभी कैसे बंधेगी? तो अनंत गुण वृद्धि रूप होगी। केवल तिर्यंच गत्यानुपूर्वी है वो जगन्य अजगन्य होगा, और यहाँ उद्योत कदाचित बंधेगी जो अनंत गुण अधिक बंधेगी। ये है ओके समान तिर्यंच गति का भंग। आगे बढ़े अभी, ये तिर्यंच गति का सन्निकर्ष नारकियों में हमने देखा, तथा मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भंग ओघ के समान है। मनुष्य गति का भी कहाँ होता है? मध्यम परिणाम में होता है, पर मध्यम परिणाम में मिथ्या दृष्टि को लेना है। इतनी विषयता कि अपर्याप्त को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए, यानी मनुष्य गति के साथ जो मनुष्य गति का जगन्य हो रहा है, तो उसमें औदारिक शरीर वगैरह कैसे बंधेगी? अनंत गुणा, क्योंकि सर्व संकलेश में वो जगन्य बनती है। ये पंचेंद्रीय जाति वगैरह अनंत गुणा अधिक बंधेगी, पर्याप्त बादर वगैरह सभी ले लेना। केवल इसके साथ जगन्य के साथ जगन्य क्या बन सकती है? मध्य, हाँ, छह संस्थान, छह सहनन, दोनों विहाय गति, वे कैसे? अस्थिरादि, वही स्थिरादि, छह युगल, अपर्याप्त नहीं लेना। स्थिरादि छह युगल लिए ना, वैसे तो मनुष्य के साथ केवल अपर्याप्त को ही लेते, बाकी तो स्थावर सूक्ष्म साधारण को लेने का सवाल ही नहीं था, ओघ में भी लेने का सवाल नहीं था, परंतु ओघ में पर्याप्त अपर्याप्त का विकल्प था। यहाँ नारकी जीव अपर्याप्त नाम कर्म बांधते ही नहीं है, इसलिए अपर्याप्त को छोड़कर बाकी सन्निकर्ष जानना चाहिए। अभी हमने तिर्यंच गति का देखा था ना, वैसे 30 पेज पर मनुष्य गति का होगा, वहां जो प्रशस्त अप्रशस्त बनते वो अनंत गुणा अधिक बनते हैं, और छह संस्थान सहनन विहाय गति और स्थिरादि छह युगल वो जगन्य भी और अजगन्य भी होता है। वहां परघात उच्छ्वास पर्याप्त कदाचित रखा था, यहाँ नियम से में रखेंगे। ख्याल में ना वहां डिफरेंस कहाँ है वो? यानी डिफरेंस वहां पर भी है, अपर्याप्त जो छोड़कर सन्निकर्ष है इसलिए परघात उच्छ्वास और वो और पर्याप्त को नियम से मिले, नियम से में रखेंगे। वो कदाचित में रखा था ना, यहाँ नियम से में रखेंगे। अब पंचेंद्रिय जाति के नारकी है, पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कर रहा है, यानी कौन है जीव सर्व संकलिश वाला है, तो पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव अभी सर्व संकलेश वाला है तो तीरियंज गति नियम से बांधेगा। 39 पेज पर नीचे से पांचवी लाइन, पंचेंद्रिय जाति ये नारकी है, पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कर रहे हैं, यानी वो सर्व संकलेश वाला जीव है, इसका जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीरियंज गति कुंड संस्थान असंप्राप्त सुपाटी का सहनन अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तीरियंज गत्यानुपूर्वी उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का जघन्य है ये सर्व संकलिष्ट है और यहाँ ये सारी अप्रशस्त प्रकृतियां वो तो उत्कृष्ट बन रही है, यानी अपने जघन्य से अनंत गुणा अधिक है। अब पंचेंद्रिय जाति प्रशस्त है तो यहाँ नियम से कौन सी बंधेगी, नारकी है तो औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मान शरीर औदारिक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघुत्रिक प्रशस्त प्रकृतियां लेना था ना, उपघात को ऊपर लिया था, त्रसो चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ये सारे प्रशस्त प्रकृतियां नियम से बंधने वाली है और उसका भी स्वामी वही है सर्व संकलेश वाला, वो जघन्य करता है, इसलिए यहाँ जघन्य भी होता है अजघन्य का भी कर सकता है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, उद्योत का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि हमने उद्योत के जघन्य का स्वामी देखा था ओघ में, तो देव और नारकी सर्व संकलेश वाला लिया और यहाँ नारकी की मार्गणा है, तो जहाँ वो पंचेंद्रिय जाति का जघन्य कर रहा है उद्योत का भी जघन्य कर सकता है, कदाचित में ही रखता है, जहाँ जघन्य कर सकता है वहां अजघन्य भी हो सकता है, प्रकृति भी ऑप्शनल है इसलिए कदाचित में रखा है। और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, इन प्रकृतियों का यानी औदारिक शरीर अंगोपांग वगैरह सब जो प्रशस्त देखी थी वो सबका, क्योंकि सबका स्वामी एक है सर्व संकलिष्ट वाला, किंतु इनमें से किसी एक प्रकृति का बंद करने वाला जीव शेष के जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, छह संस्थान छह सहनन दो विहाय गति छह युगल और तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओघ के समान है। देखो तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ो तो माकी का जघन्य मध्यम परिणाम में जघन्य हो रहा है और तीर्थंकर का प्रकृति का भी नारकियों में तो लेना है हमको, तो उसके तो अभी मिथ्या तो के सन्मुख तो नहीं कह सकते हैं, उसका जो तत्प्रायोग विशुद्ध ले लेना, तत्प्रायोग संकलेश वाला लेना। हाँ ओके समान वो स्वामी में फर्क है, कथन जो है ना उसका देखो हम लगा लेते हैं, ये छह संस्थान छह सनन दो विवाहगति छह युगल मध्यम परिणाम में जघन्य होते और यहाँ उसके साथ क्या क्या बन सकते हैं, तीर्यंच गति भी बन सकती है मनुष्य गति भी बन सकती है, तीर्यंच गति अगर बंधेगी सामान्य नारकियों में तो क्या कहेंगे, अनंत गुना अधिक बनती है। और मनुष्य गति जगन्य भी बंधेगी और जगन्य भी, निकालो वो भी निकालो। अभी हमने 30 पेज तक आए थे ना, उसके आगे देखना है। छह संस्थान छह सनन का देखना है था ना। पर है वो वहां पर 30 पेज पर मनुष्य गति का जगन्य है। हमको छह संस्थान और छह सहनन का जगन्य चाहिए। देखो वहां छह संस्थान 33 पेज पर ले लेते। कहां गए हम, कहां आए थे? हाँ, छह संस्थान छह सहनन पेज नंबर 33 निकालना। हाँ, देखो नीचे का पैराग्राफ। समचतुर संस्थान का जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाले, ये छह संस्थान के लिए है, परंतु एक ही की बात अलग बता रहे हैं। तो वहां तीरंज गति, दो शरीर दो अंगोपांग, तीरंज गत्यानुपरी उद्योग का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। तीर्यंच गति को अनंत गुणा कहने का कारण वो सातवें नरक में उसको जगन्य होता है इसलिए, और बाकी तो प्रशस्त प्रकृतियां है, वो मध्यम परिणाम में कैसी बंधेगी, अनंत गुणा अधिक बंधेगी, क्योंकि उसका अपना जगन्य संकलेश में होता है। अब ये समचतुर के साथ मनुष्य गति देव गति छह सहनन दो आनोपूर्वी दो विहाय गति सिरादि छह का कदाचित बंद होता है, वो जगन्य भी और अजगन्य भी होगा। अब समचतुर संस्थान है तो जाति तो पंचेंद्रीय जाति ही बंधेगी, और तेजस कारमान वगैरह जो ध्रुवबंदी है वो नियम से बंद होता है, अनंत गुणा अधिक होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही सब कथन हो लेना समचतुर से के लेना। अब उसके बाद न्यग्रोत परिमंडल 34 पेज पर, न्यग्रोत परिमंडल का जगन्य अनुभाग बंद कर रहा है, ये भी मध्यम परिणाम ही सारे हो जाते हैं जगन्य। वहां पर भी तीर्यंज गति तीर्यंज गत्यानुपूरी उद्योत का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि न्यग्रोत परिमंडल का जहां बंद है और तीर्यंज गति का अपना जगन्य वही सातवें नरक में होता है। ऊपर के नरकों में बात अलग होगी, वहां तीर्यंच गति का भी जगन्य हो सकता है, यहाँ अनंत गुणा अधिक कहेंगे क्योंकि यहाँ नारकी इन जनरल की बात चल रही है। उद्योत भी सर्व संकलेश में जगन्य है और न्यग्रोत परिमंडल मध्यम परिणाम में जगन्य है, उसका भी अनंत गुणा अधिक होगा। अब अन्य जो मध्यम परिणाम में जगन्य बनती है, मनुष्य गति छह सहनन दो विहाय गति स्थिरादि छह वगैरह वगैरह, वो जगन्य भी अजगन्य भी होगी। न्यग्रोत परिमंडल तो पंचेंद्रीय जाति औदारिक शरीर वो तो नियम से बंधेगी, तेजस कारमान वगैरह अंगोपांग जो अनंत गुणा अधिक होगी क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियां हैं नियम से बंधने वाली। इसके साथ अप्रशस्त वर्ण और उपघात को भी लेना, वो भी अनंत गुणा अधिक बंधेगी क्योंकि मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि इसको बांधता है, समय दृष्टि इसको नहीं बांधता है, तो इसलिए समय दृष्टि के उपघात और वो जगन्य होगी, यहाँ वो अनंत गुणा अधिक होगी। अब हुंड संस्थान के साथ क्या होगा? हाँ, उसका जगन्य करने वाला वो तो नरक गति भी बन सकती है, मनुष्य गति भी बन सकती है। अब यहाँ नारकी को नरक गति नहीं लेना, हाँ तीर्यंच गति मनुष्य गति लेना। तीर्यंच गति ऐसे भी अनंत गुणा बनती है, मनुष्य गति जगन्य भी बन सकती है, इस तरह से हमको सोचना है। अब तीर्थंकर प्रकृति भी ओक के समान बताए, तीर्थंकर प्रकृति जो बांध वो तो हाँ तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है वो तो नारकी जो है उसके साथ मनुष्य गति बांध रहा है। ओग में हमने जो देवगति बांध रहा था, पण जो कुछ बांध रहा है उस बाकी जो पंचेंद्रिय जाति वैकरिक शरीर वगैरह वगैरह वो तो अनंत गुना अधिक बांधेगा। क्योंकि सर्व संकलेश में वो जगन्य बनती ही नहीं है, तत्प्राग संकलेश में, और बाकी उसके साथ बनने वाली जो पंचेंद्रिय जाति वगैरह वगैरह जो होती है वो सर्व संकलेश में जगन्य बन देगी, उसकी अपेक्षा लेना उसमें। केवल वहां देवगति लिया तो यहां मनुष्य गति लेना है, बस इतना ही। कहां लिखा है ओग के समान है ना, वहां ओग में देवगति आदि लिया था, यहां मनुष्य गति आदि लेना है। यही रुकेंगे हम। हाँ बाद अप्रशस्त वर्ण से चालू करेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।